आज रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, जिसको वाल्मीकि जी ने समाधि में दर्शन किए। भक्ति भी समाधि में ही पहले होगी और भावावस्था में आने पर भगवान के जदा कदार दर्शन हो सकते हैं। तो इनकी समाधि भावावस्था की समाधि या उसे ऊपर भी प्रेम की समाधि हो सकती है। इसे सब लीलाओं को ऐसे देखा जैसे आंवले को हाथ में लेने से आंवले के रग जितने हैं सब कुछ उसमें दिखाई पड़ता है हाथ में लेने से, ऐसे राम के लीलाओं को संपूर्ण रूप से देखेंगे। वी हैव डिस्कस्ड एक्सप्लेन इन मॉर्निंग ऑल द पास्ट टाइम्स ऑफ राम। फिर वाल्मीकि सॉ इन हिज समाधि एज व्यासदेव सॉ इन समाधि कृष्ण लीला एंड देन ही एक्सप्लेन इन श्रीमद् भागवत। इन दिस वे ही सॉ ऑल द पास्ट टाइम्स ऑफ राम इन हिज समाधि एंड देन ही मेड दिस। It may be that he has taught locus not on the paper by Shruti. पहले श्रुति थी, श्रुति के द्वारा उन्होंने किसे हो सकता है कि ये लिखा गया हो, किंतु उसी समय में उन्होंने वो श्लोक सब बनाए थे। सबरी से पंपासुर में गए, पंपासुर आजकल जिसको किष्किंधा कहते हैं, वहां पर सबरी से भेजते। किसने बतलाया? कबंध ने बतलाया। कबंध एक बड़ा भारी राक्षस था। जब ये जा रहे थे, सीता जी की चोरी हो गई है तो उसका पेट था मुख में, ये तीर ही उसका पेट में था, मुख भी पेट में था। हमने क्या कहा? उसका मुख था पेट, इसे उसको कोई मार नहीं सकता। और बड़े बड़े जानवरों को, हाथियों को भी 10-10, 20-20 एक साथ में खा लेता था, उसको कोई मार नहीं सकता था हथियारों से, अस्त्रों से, शस्त्रों से मर सकता था। यदि इसको कोई जमीन खोद करके गाड़ दे तो इस हिस्से में मर जाए। जब राम लक्ष्मण जी सीता जी के लिए विलाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बड़ा भारी विकराल पेट में ही मुख को बहुत जोर से फैलाया हुआ उनके तरफ में दौड़ा। उस समय में दौड़ करके और इनको एकदम निगल जाना चाहता था, उनको भी पकड़ भी लिया। फिर राम और लक्ष्मण दोनों मिल करके अपने कंधों पर उसको ले लिया, राम और लक्ष्मण को लेकर के चलने लगा। पहले तो सीता जी को लिया, फिर सीता जी को छोड़ करके राम को लिया और लक्ष्मण जी को। वो अपने फरसे से, उनके पास में कुल्हाड़ी या फरसा, वहीं रहते वहीं से काटने लग गया, कोई भी परवाह उसको नहीं है। फिर हाथ को अलग कर दिया, फिर वो मुख में इनको लेना चाहा। इतने में राम जी ने अपने पैरों से उसे धक्का दे करके गिरा दिया और पैरों से दबा दिया। और लक्ष्मण जी को कहा जल्दी से गड्ढा खोलो। बस एक पहाड़ की तलाई में यहाँ गड्ढा था, उसको और भी गड्ढा खोद करके गिरा किया। जब लक्ष्मण ही शेष जी कर रहे तो उनके इच्छा से नहीं हो जाएगा गड्ढा खोद करके, और उसको पैरों से ठेल करके गिरा दिया और फिर उसे भर दिया। उसने बताया जब मरने लगा तो अपना सुंदर दिव्य रूप धारण किया, क्योंकि उसकी हतारी गायक है राम, उसको गति दी। उसकी आत्मा सुंदर से निकल करके आई और उसको उन्होंने बतलाया आप पासी में रहती है पंपा सरोवर में, इस रास्ते से आप जाएंगे वहीं पर आपको एक स्त्री मिलेगी, बड़ू भक्त सबरी नाम, नीच जाति की है किंतु भक्ति कर रही है। उसके गुरु जी थे मातंग, वो आश्रम उसके लिए दे दिया है। मातंग जी तो अब चले गए हैं, आप जरूर मिलिए। वो फूलों से रोज रास्ता सजाती थी, गुरु जी ने कहा था जयराम आएंगे, किंतु कब आएंगे ये नहीं बतलाया, किस लिए नहीं बतलाया, उत्कंठा बनी रहे। भगवान कब मिलेंगे कौन जानता है, उत्कंठा यदि रहे, उत्कंठा को बढ़ाने के लिए जैसे गोपियों का त्याग किया तो उत्कंठा बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, कब मिलेंगे कोई ठीक नहीं। या कभी ऐसे मिलेंगे बहुत दूर कदम की छैया में मिलेंगे, और यदि आप आगे बढ़ेंगे तब तक न जाने किधर चले जाएंगे। उत्कंठा बढ़ाने, जब उत्कंठा पूरी हो जाएगी, प्रेम का आविर्भाव होगा, तब फिर मिलेंगे। इसी तरह से सबरी प्रतिदिन के लिए पलक पावड़े बिछाना होता है, इस तरह से प्रतिदिन देते हैं। कभी भी अपने पलकों को उनके पैरों के नीचे बिछाने के लिए लगा देते हैं, प्रतिदिन उत्कंठित रह। भजन भी ऐसे हो, कब भगवान मिले, अवधर में तत्त क्रियाएं हो, भजन की क्रियाएं हो, उत्कंठा बनी रहे। राम गए, सब ऋषियों को भी छोड़ दिया, उसके घर पर गए, वो बड़ी आतुर हो गई। पहले से ठीक करके रखा था जैसे इस पेड़ का फल देर या और अच्छे होंगे नीचे, उन्हीं का प्रतिदिन लाती थी, आज भी लाई। और राम ने उसके जूठे देव, जूठे मैंने उस तरह का जूठा देव उसको खिलाया। जूठा देव जैसे खा करके नहीं, ये तो ब्रज के लोग दे सकते, इसका तेज तो कोई नहीं दे सकता। वो जूठे देर का माने क्या, चक करके देखा, उसी पेड़ से ले आई। इस तरह से सब जब की वहां पर रामचंद्र जी उस पर दया की, तो वहां पर जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे वो लोग आए, महाराज हम लोग आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि वहां का एक सरोवर पानी पीने का है, पंपा सरोवर, उसका पानी में कीड़े लग गए हैं, वो पानी अब हम लोग नहीं पी सकते, इसे कृपा करके आप उसे पवित्र बना दीजिए, इससे पानी हम लोग पी सकें। सुना ये अपवित्र कैसे हुआ, उसमें कीड़े कैसे पड़े, तो ये जो जिसके पास आप आए हैं इसके छूने से वो अपवित्र हो गया, नीच जाति की है, और गुरु जी इसके वजह से इसे छोड़ करके चले गए स्थान को। हम लोग इसी के कारण अपने गुरु जी के पास में नहीं थे। मैंने कहा, उन्होंने कहा रामचंद्र जी ठीक है, इसके अपराध से नहीं बल्कि तुम लोगों के गुरु जी के चरणों में और इसके चरणों में अपराध से याचा हुआ है, ये पड़ेंगे। अभी तुम लोग जाकर के इसे क्षमा मांगो और इसका पैर धो करके और उस पानी को उस सरोवर में डाल दो, देखो जो ठीक हो जाए। तब उन लोगों ने उसके पैर पखारे और पका करके उसका पानी लेकर के उस सरोवर में डालते, एकदम निर्मल पानी हो गया। और सबरी इस जगत को छोड़ करके भगवान के परम धाम में चली गई। उसने बतलाया यहाँ पर हनुमान जी सुग्रीव जी रहते हैं, हनुमान आपसे भेंट करेंगे और अपनी पत्नी का भी आपको पता चलेगा और यहीं से आपका काम होगा। इतने में हनुमान जी आए, फिर हनुमान जी से भेंट हुई। कल बतलाया था राम लक्ष्मण हनुमान जी के साथ में ऋष्यमुख पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत माने ऋषि, ऋषि लोग वहां पर तपस्या करते थे, भजन करते थे। विशेष करके बाली बहुत ही बलवान था और उसने ब्रह्मा लिया था, ब्रह्मा जी से, जो मुझसे लड़े उसका आधा बल मैं ले लूंगा और मेरा बल तो रहेगी, इसे सबको परास्त करता था। कभी एक दैत्य आया, क्या जाने नाम मुझे याद नहीं, वो दैत्य आया बाली से लड़ने के लिए, बाली उससे लड़ पड़ा और पराजित होकर के भागा और एक कंदरा में छिप गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि भैया तुम यहीं पर रहो, मैं इसको परास्त करके आता हूँ। बहुत दिन लग गए, 5-6 महीने लग गए, और उस कंदरे से रक्त की धारा जब आई तो सुग्रीव ने समझा कि हमारे भाई को उसने मार दिया। इसलिए जल्दी से बड़े बड़े चट्टान उसके ऊपर में रख करके वो घर भागा और जाकर के बतलाया बाली की स्त्री से और बच्चों से अंगद इत्यादि से ये वो बाली शायद मारे गए, भीतर से रक्त की धारा में भाग करके चला आया। तो राज्य से बिना राजा का रहेगा नहीं, इसलिए बाली की पत्नी ने भी अनुमोदन किया और वो वहां के सम्राट नियुक्त हुए, अंगद को युवराज बनाया गया। इतने में बाली उस असुर को मार करके और बड़े बड़े कष्ट से उन पत्थरों को हटा करके किसी प्रकार से घर आया और सुग्रीव को बहुत मारा। ये तुम चाहता था कि हमें मार करके हमारी पत्नी के साथ में रहेगा और राजा राजा होगा, मार करके उसे भगा दिया, जान से नहीं मारा। कहे यदि तुम हमारे निकट में आ जाएगा तो तुम्हें जान से मार डाले। ऋषिमुख पर्वत पर यह था कि बाली ने एक असुर को मार करके मारा था, वो उसका हाड़ इतना था ऊंचा और भारी था, यदि उसको कोई इधर से हटा करके फेंक दे किसी प्रकार से तो वो व्यक्ति बाली को मार सकता था,
दुंदुभी।
और किसी कारण से एक ऋषि के अभिसंपात से उस पर्वत पर वो नहीं जाता था, बाली नहीं जाता, नहीं तो मर जाएगा। इसलिए जब रामचंद्र जी से हनुमान जी से भेंट हुई, उनसे मित्रता हुई और वो ले गए ऋषिमुख पर्वत पर, उनकी मिताली की अग्नि को साक्षी देकर के मिताली हुई। तो उस समय में रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारी स्त्री को जो बाली रख रखा है, बाली को मार करके तुम्हारी स्त्री को तुम्हें सौंप दूंगा। और सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की, मैं जहां भी आपकी पत्नी को चोरी करके कोई भी ले गया हो, मैं वहां से पता लगा करके आपको बतला दूंगी कि कौन ले गया है और उसे मारकर सीताजी को ले आने के लिए सारी व्यवस्था मैं करूंगा। दोनों की मिताली हुई और इस तरह से बाली का वध किया गया, पेड़ों की आग से उन्होंने वध किया। और तब कार्तिक के महीने में वो पहला दिन जो वो विजय होता है दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने वहां से विजय किया लंका को। इसके पहले हनुमान जी जाकर के सीता जी से मिले, खोज खबर लिया और लौट करके आए। बल्कि उस समय में जानबूझ करके ये उनके इंद्रजीत के बाणों में बंध गए और उनको पकड़ करके रावण के पास लाया गया। रावण ने कहा ये बड़ा दुष्ट बंदर है, इसको पूंछ में कपड़े लेकर के और गंधक इत्यादि लगा करके इसको जला दिया जाए, अंततः सम न हो, दूध को मारना अच्छा नहीं है इसलिए दंड देना ही अच्छा है। और जब ही लगाया, वो छोटे रूप धारण किए हुए थे, और जब ही लाग लगाई विराट रूप धारण करके और कूद गए और लंका को जला फला करके भस्म कर दिया। सीता जी को बोले हमारी पीठ पर आप चढ़ जाइए, मैं आपको लेकर के रामचंद्र जी के पास। उन्होंने कहा जब मैं विवश होकर के रावण हमको ले आया, विवश होकर के मैं उनके पीठ पर या उनके गोदी में मैं आई, अब मैं किसी पुरुष का संग जानबूझ करके नहीं करूंगा, किसी का स्पर्श नहीं करूंगा, इसलिए अच्छा होगा कि राम ही आए और हमें रावण को जीत करके ले जाए। अपने हाथ की एक मुद्रिका दी, उन पर सीता जी ने विश्वास कैसे किया? रामचंद्र जी ने इनको मुद्रिका दी थी, ये जाना और सीता जी को तुम दिखलाना तो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगी, इसलिए पेड़ पर चढ़ करके विलाप करती हुई सीता जी को गिरा दिया। सीता जी चंद्र से आग मांग रही थी, वो अंगूठी चमचमाती हुई जब गिरी तो उन्होंने सोचा कि चंद्र सचमुच में आग हमको दे दिया, किंतु वो सुशीतल अंगूठी को देखकर कही अरे ये तो अंगूठी, ये तो राम की ही कैसे आई? हनुमान जी अपने सूरत में जिस रूप में थे उसी रूप में नीचे आकर के उनको प्रणाम किया, मैं उनका दास हूं, मैं ये ले आया हूं आपकी प्रतीति के लिए, ये हम पर विश्वास करेंगे। फिर सीता जी ने क्या किया? अपना एक और सब तो गिरा दिया था, किंतु चूड़ामणि उनके साथ में थी, वह चूड़ामणि लेकर के उनको ले करके राम को दिखलाना, तो वो विश्वास करेंगे यहाँ तुम हमसे मिलकर के गए हो। श्री रामचंद्र जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए और सारी सेनाओं के साथ में दशमी के दिन वहाँ के लिए विजय किया। किस प्रकार से समुद्र को उन्होंने बंधवाया और बंधवाने के बाद में लंका में पधारे संपूर्ण दिशा में सुग्रीव जी ने बानरों को भेजा। जितने द्वीप हैं पृथ्वी में, अभी हम लोग घूम करके आए सारे विश्व को पूरा, उसमें देखा जी हनुमान जी कहाँ कहाँ गए, सब देशों में गए, उसकी छाप भी किसी किसी देशों में है।
विदेशों में क्या है?
बाली एक द्वीप है, उसका नाम बाली के ऊपर में पड़ा है,
इंडोनेशिया।
हनुमान जी ने हिडम्बक को मारा था, विराट स्टैच्यू किया गया है उसके सब कहाँ का। ये पार्थ जी गए थे ऑस्ट्रेलिया में, शिव जी की वहीं पर आराधना की थी, वो अस्त्रागार था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया माने अस्त्रागार से ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से अर्जुन का नाम था पार्थ, वहाँ पर कुछ दिनों तक रह करके वहीं पर शंकर जी की आराधना की थी, इसलिए उसका नाम हो गया पार्थ। ये इंडोनेशिया मलेशिया, ये था, इसका नाम था मलय पर्वत, जहाँ पर कि चंदन होता है। अभी कुछ है किंतु वहीं से शायद आता है, ये क्या होता हम लोगों ने अनुसंधान किया। जहाँ पर कि रमणिक द्वीप, जहाँ से ये काली जी आए थे, उसका अभी तक वहाँ पर उनकी पूजा होती है और उसका नाम, वो लोग वहाँ के जो देशवासी हैं उसको रमणिक द्वीप मानते हैं। हनुमान जी जहाँ जहाँ गए थे या बंदरों की सेनाएं जहाँ जा गई थी सीता जी का पता लगाने के लिए, मंगोलिया और कहाँ कहाँ, उस सब स्थानों में वो सब चिन्ह कुछ कुछ हैं। श्री राम का सीता जी के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, बंदरों को रीछ स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन करना। बंदर लोग घूमते 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 एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहां पर एक बड़ी बारीक गुफा थी, सब बंदर उसमें नीचे उतर गए और वहां एक विकराल राक्षसी को देखा और सबको निगली जाती, किंतु भाग्यवश उस समय में वो गरुड़ जी के भाई संपाती थे, वहीं से देख रहे थे कि लंका में सीता जी है, उसकी इतनी नंद जटायु के बड़े भाई संपाती मरे हुए जैसे पड़े हुए थे, अपने भाई के शोक में वृद्ध हो गए थे। वो करते हनुमान जी को बतलाया, तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो, तुमको तो खा जाएगी। मैं माता सीता जी का खोज करने के, अरे मैं देख रहा हूँ यहाँ से सीता जी वहां पर बैठी है, गिद्धों की बड़ी आकाश में उड़ जाने पर भी गंदी चीजों को जहां देखते हैं बस झट मड़ाने लगते हैं, उसको खा लेते हैं। ये गरुड़ जी उनके भैया जो हैं जटायु, ये सूर्य को पकड़ने के लिए दोनों भाई जा रहे थे, संपाति बाजी भाई मैं नहीं जाऊंगा मैं जल जाऊंगा, तो वो बीच से लौट आए और ये आगे बढ़ गए, आगे थोड़े जाने जाने पर पंख ओंख सब जल गए। तो ये संपाति का वो तो लौट आया जटायु लौट, और संपाति नहीं लौटा तब उसके ये सब जल गए, इसलिए तब से केवल इसी संवाद को देने के लिए जीवित था ये सीता जी का। तब उनको पता लगा, वे लोग समुद्र के किनारे प्राय उपवेशन किया, जो सीता जी तमिल नहीं किया करें अनशन किया। संपाति से उनकी भेंट हुई और समुद्र लग्न के लिए हनुमान जी का महेंद्र पद बचा। उन्होंने कहा जी आप लोगों में से मैं तो अभी चला जाता, मुझे वो पंख होता था, एक मिनट में पार करके चला आता, किंतु तुम लोगों में जो वीर हो इसको पार कर सकता है, तो उसे पार करके जा करके पता लगा था। मैं यहीं से बतला रहा हूं ये कहां है। उन्होंने बतलाने पर जमवंत ने कहा, मैंने तो जब वामन देव अपना पैर जब की स्वर्ग तक लिया था ब्रह्मलोक तक, उस समय में मैं पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा की थी, ये समुद्र पार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो पार कर जाऊंगा किंतु बूढ़ा हो गया हूं, लौट आ करके आऊंगा कि नहीं कोई संभव। अंगद को कहा गया जिसे तुम पार करो, उन्होंने कहा कि मैं भाई पार तो कर लूंगा किंतु उधर से आने में कुछ अक्षर कुमार हमको मार डालेगा, उसका अभिसंपात है हमारे ऊपर, इसलिए मारे अक्षर कुमार को मार डाले तब मैं जाऊंगा। इस तरह से जितने बंदर थे बड़े बड़े बलवान, किंतु जब नहीं हुआ तो जामवंत जी ने कहा अरे तू क्यों बैठा हुआ है हनुमान जी को, तुम क्यों बैठा हुआ है, तुम तो चाहो तो 10 बार लांग करके चले जाओ समुद्र को, तुम क्यों नहीं लांगता। और भी उसकी बड़ाई थी तो उन्होंने हनुमान जी एकदम विराट रूप धारण किया। उनको ये था कि अपने बल को भूले रहेंगे, यदि कोई स्मरण दिलाएगा तो उनको याद आएगी। सूर्य को खाने के लिए गए तो इसलिए इंद्र ने वज्र से मारा था, उनका मुख थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसलिए हनुमान टेढ़ी थोड़ी, इसलिए हनुमान उनका नाम हुआ। देवता उन्होंने उनके पिताजी पवन देव जी ने हवा बंद कर दिया, सब लोग मरने लगे, अंत में ब्रह्मा इत्यादि आकर के उसे भर दिया और अजर अमर होने का भर दिया, तब फिर जाकर के उनको छोड़ा। ये हनुमान जी फिर जाकर के हनुमान ने अक्षय कुमार को मारा और इसके बाद में लंका को जला करके चले आए। अब अंगद के लिए भी सुलभ हो गया, बांद्री सेना के साथ में सुग्रीव जी पता लगने के बाद में समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र को कैसे पार किया जाए उस समय में सब लोग, रामचंद्र जी ने कहा कि भाई रास्ता दे दो, हम उसको उधर जाना है बांद्री सेना को लेकर। जब नहीं माना तब वहीं पर समुद्र के किनारे वो बैठ गए, तब ही नहीं माना तब उन्होंने धनुष उठाया रामचंद्र जी, जब सुखाने के लिए उठे, तुमको याद नहीं है अगस्त जी का तुम्हें पान कर लिया था, तो वैसे मैं पान नहीं तुम्हें बाणों से सुखा दूंगा। तब उस समय में वो डर गया, बोला कि महाराज आपने ही हमारी मर्यादा बनाई है, इसलिए बंदरों में से नल और नील आपका नाम लेकर के समुद्र को बांध सकते हैं, इसके लिए हमें सुखाना उचित नहीं है, मैं आपके शरणागत हूँ। तो नल नील को बुलवाया गया, वे राम नाम कहते और पत्थर तैरना क्यों तरता, वो जहाँ रहते थे वहां पर कोई ऋषि रहते थे, बचपन में बड़े नटखट थे दोनों भाई, इसलिए ऋषि का कुछ कभी आसन कभी कुछ वो पानी में डाल देते, वहीं पर नदी थी सब डाल देते। तो ऋषि को बड़ी चीढ़ आई किंतु दयालु, उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ पानी में डालेगा वो तैरेगा, बस वहीं पर स्थिर हो जाएगा किंतु डूबेगा नहीं। तो इस समय उनके लिए वरदान हो गया, जो जो पत्थर आता राम नाम कहते और बस रख देते स्थिर हो जाता पानी पर, इस तरह से पुल बंधा। सारे लोग वहां पर जितने बंदर भालू सब जब पुल बंद करके तैयार हो गया, जब उनकी सेना वहां पर पहुंच गई तो अंगद ने कहा कि मैं हमारे पिताजी के ये बंधु थे, इसलिए हम पहले उनको समझा लूं और तब फिर जैसा आप उसे समझे कर। इसलिए अपने पिताजी के बंधु मित्र को समझाने के लिए एकदम परकोटा पार करके एक लंप दे करके कूद करके वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद में तुम कौन है, सब लोग डर गए, अरे एक बंदर आया था उसने जला दिया, नहीं ये दूसरा बंदर आया। तो ये कहे तुम कौन है, तो मैं राम का दास हूँ, उनका दूत हूँ, किस लिए आया, क्योंकि आप हमारे पिताजी के मित्र थे इसलिए मैं समझाने के नाते आया, जो सीता जी को अगवानी में रख करके उपहार के साथ में पालकी पर लेकर के और आगे करके आप भी जाकर के उनके चरणों में शरण लीजिए, नहीं तो आपका विनाश बहुत जल्दी से होगा। तो उसने कहा कि इस बंदर को पकड़ लो, तुम लोग क्या पकड़ेगा, ठहरो ना ठहरो, इतना जल्दी से मत घबरा, आगे चलते हैं, हम चलते हैं, हम डाल पर चलते हैं, ये पात पर चलते हैं। फिर हनुमान ने कहा कि देखो हमारा जो आया था वो दूत था, मैं दूत नहीं, मैं अपने चाचा जी इस समय जो समान उनके मित्र हैं, मैं उनका लड़का के समान हूँ, मैं दूत नहीं आया। हमारे दूतों में सबसे कमजोर बंदरों में था वो आया था, उसका नाम था हनुमान, वो जला गया, यही समझो। कहा उन्होंने जैसे, अच्छा एक बात करो, मैं सीता जी को हार जाऊंगा, नहीं हम लोग लौट जाएंगे, आपको दे देंगे, हमारा पैर अभी पृथ्वी पर रखता हूँ, आप लोगों में से जो बलवान हो हमारे पैरों को उठा ले, यदि हमारे पैर को जमीन से उठा देगा मैं सीता जी को छोड़ करके चला जाऊंगा, राम का भी हमारी बात मान लेंगे और सारी सेना लौट जाएगी, तुम सीता को रख लेना, और यदि नहीं यदि उठा सका तो सीता जी के साथ में तुमको चलना पड़ेगा। अच्छा तो देखें, बस उन्होंने पैर कैसे कैसे बैठे, एकदम विरासन में बैठ करके पैर को लगा, जितने असुर उनसे थे बड़े बड़े लड़ाकू वीर, वो आकर के एक एक तरफ से हट उनके पैरों को उठाने लगे, किंतु कोई से नहीं उठ सका, जब किसी से नहीं उठाई यहाँ तक कि इंद्रजीत भी नहीं उठा सका। खाची रावण बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा अच्छा तो ठहरो मैं उठा। जब उठ करके पैर पकड़ने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि तुम क्या पकड़ने आ गए हमारा पैर, अरे रामचंद्र जी का पैर पकड़ तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह की बातें हुई, और अंगद ने क्या किया, जब नहीं हुआ तो थोड़ा सा पृथ्वी को ऐसे पकड़ा, ऐसे जोर से किया कि जैसे वो बंदर होता है ना बड़े बड़े पड़ों की डाल उसको पकड़ करके ऐसा हिला दे, ऐसे पृथ्वी को हिलाया, रावण का मुकुट सब गिर गया, दसों सिरों का, और दसों सिरों के मुकुट को वहीं से लेकर के राम के पास में भेज दिया। माने क्या, उसके जितने गुण थे सदाचार इत्यादि सब गुणों को और उसकी सारी शक्ति को राम के पास में भेज, एकदम निर्बल बन गया। इस तरह से एक वहीं से कूदे जय श्री राम और एकदम राम के पास, रामचंद्र जी के सामने ये सारी बातें सुनाई, उसको जितना कोई कठिन काम नहीं है, बाबा सहज हम लोग जीते, हमारा पैर ही कहीं नहीं उठा सकता। रामचंद्र जी भी प्रसन्न हुए। इसके बाद में जब हनुमान जी जबकि कूदे पर्वत से, मैनाक पर्वत से कूदे, उस समय में बड़ी तेजी के साथ में जा रहे थे, इतने में सुरसा आई। सुरसा कौन है, सर्पों की मैया शायद है, या अहिंक माता है ना सर्पों की, बड़ी विकराल रूप, और योग जानती थी जैसे कि पूतना थी, योग विद्या में पारंगत थी, उसने बड़ा भारी विकराल मुख फैलाया, हनुमान को निगलना चाहा। हनुमान ने कहा जी मैया मैं जा रहा हूं किसी काम से, बाधा मत डालो। अंत में हनुमान जी को निगलना चाहा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तस तस कबर रूप, दुगना रूप देखा, और जितने जितने बढ़ाते गए, बढ़ते बढ़ते जब इतना बड़ा हो गया तो हनुमान जी ने एक मशक जैसा रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश करे और कान के तरफ से या नाक के से निकल करके चले गए, हाथ जोड़ दिया। सुरसा ने उनको बर दिया, बेटा तुम काम करने में समर्थ है, तुमको कोई भी बाधा नहीं दे सकता, मैं तुम भी तुमको बर देती हूँ। इसके बाद में जबकि पहुंचे लंका में तो दुर्गा जी, उसका नाम क्या था, लंकिनी, वो वहां पर नियुक्त थी, लंका भर में कोई नहीं प्रवेश कर सकता। तब हनुमान जी जब प्रवेश किया मशक के समान रूप धारण करके तो वो समझ गई, तो ये तुम कौन है, तो मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, इसलिए आए सीता जी का खोज करने के लिए, हमारे आदेश के बिना कैसे घुस गया, अभी निकलो और नहीं तभी तुम्हें मारते। हनुमान जी ने सीधी शादी से एक लात से ऐसा मारा जो ढमिलिया खा गई, फिर करके हाथ जोड़कर वो मुझे याद आ गई, हमको ये वर था जिस समय राम का कोई दूत आए और तुम्हें पैर से मारे और तुम बेहस होकर के गिर पड़ेगी, समझना चाहिए राम का दूत है, अब लंका का विनाश सब निकट है। मैं समझ गई लंका का विनाश बहुत निकट है, अब आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं यहीं से अब चलूँ, अब मेरा काम नहीं, अब लंका तो ध्वंस होगा ही। इसके बाद में चले गए ठीक। वहां पर लंका में पहुंचे, त्रिकुट के ऊपर में लंका बसा हुआ है। पहले ये कुबेर की राजधानी थी, कुबेर के पिताजी वो स्थान उनको दिए थे, कुबेर से छीन करके कुबेर की ये त्रिकुट लंका की नगरी छीन लिया और विमान भी छीन लिया। विमान भी रावण के पास ही में था, पुष्पक विमान। इसके बाद में रात्रि के समय में लंका में प्रवेश किया अकेले, कर्तव्य का विचार कर रहे थे। रावण के घर में गए सीता जी को देखने के लिए, यहां तो नहीं, तो देखा मद्यपान का स्थान, सारी स्त्रियां एक एक से सुंदरी वहां पर मद्यपान करके, और रावण भी बदहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। वहां देखा कि अरे ये सीता हो सकती, जब उनका रूप देखा ये नहीं ये जरूर होगी। फिर से देखा जैसे ये तो मदपान किए हुई, मंदोदरी को देखा, मंदोदरी माने क्या, मंदोदरी माने जिसके पेट बहुत छटा हुआ हो, परम सुंदरी, ये हो सकते कहीं नहीं, ये तो हो सकती नहीं, सीता जी तो मदपान छू नहीं सकती, इसलिए ये नहीं हो सकती। कहाँ है, तन्न तन्न करके खोज करके हार गए, कहीं भी नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण को भी देखा, सबको देखा, इसके बाद में पुष्पक विमान को देखा, और इसके बाद में विभीषण जी मिले, विभीषण जी उनको देकर के राम राम सुना आकाश से उन हनुमान जी ने, हाँ जी ये तो कोई भक्त मालूम पड़ता है। तो जब ही हनुमान जी वहां पर गए और उनको राम राम का अभिवादन किया, वो भी बड़े प्रेम से इनसे मिले और दोनों में बातें हुई, उन्होंने बतलाया ये पास ही में अशोक वाटिका है, वहां पर तरह तरह के असुर लोग हैं, असुरानियां हैं, और वे सीता जी की खोज उसकी पर ये रक्षा कर रही हैं। फिर अशोक वाटिका में पहुंचे और वहां पर सीता जी को देखा, पेड़ के ऊपर में चढ़ गए, सीता जी का भाव देखा, रात के समय ही और चांदनी रात, सीता जी बड़ी विलाप कर रही हैं, जितनी वहां का राक्षसियां थी सीता जी को मारने के लिए तैयार थी। रावण एक दिन बीच में आया, आप हमारे प्रस्ताव को मानिए और नहीं तो ये जो राक्षसियां तुम्हें खा जाएंगी, या मैं खुद ही तुम्हें मारूंगा, लेकर के निकल जाऊंगा तुम्हें। सीता जी जैसे की तैसी रही, सीता उनको रावण को एक ये अभिसंपात था, वो किसकी स्त्री को, कुबेर की पुत्र वधु को जबरदस्ती पकड़ा था, बेदबती, उस समय उसने अभी संपा दिया, किसी की इच्छा के विपरीत यदि किसी का स्पर्श करेगा तुम्हारा सिर उड़ जाए, इस डर से सीता जी को नहीं छूटा था, इसलिए वो गया, डर दिखलाया और असुरानियों को बोला, राक्षसियों को, जो इसे किसी प्रकार से राजी कराओ हमारे प्रस्ताव पर, अन्य तो तुम लोगों को भी दंड देंगे। उसमें से एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी, त्रिजटा वो कुछ भक्तिमती थी, वो सब निगरानी कर रही थी किंतु सीता के पक्ष में थी, उनको जो जरूरत होता उनकी सेवा करती। हनुमान जी ने देखा सीता जी चंद्र से आग मांग रही, अब मैं जल मरूंगी, विरह नहीं सहा जाता। हनुमान जी ने ऊपर से अंगूठी, उन्होंने सोचा जी आग मिल गई, देखा जी कपड़ा जला नहीं, ऊपर में देखा जी ये कहां से आई, कितने हनुमान जी कपट वेश में नहीं आए, उसी वेश में आए, और उन्होंने बतलाया जी राम का दूत हूं, और ये अंगूठी उनको दी, उनको सीता जी को अन्य किया जैसे आप चलिए, उन्होंने कहा जी नहीं राम को आने दीजिए, सब मैं चलूंगा। उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी भूख लगी है, आदेश दीजिए, इसके फल बड़े सुंदर सुंदर मधुर और अमृतमय हैं, क्या फल, आम, विश्व भर में वहां पर लंका में और इंडिया में ही, तो वहां और भी अच्छा था, वो कहां कहां से आम लाया होगा, हो सकता है स्वर्ग से ही उखाड़ करके लाया हो, वो अमृत के समान। सीता जी ने आदेश दिया ठीक है खाओ, बस हनुमान जी गए विकराल रूप धारण करके, समस्त पेड़ों को तोड़ मरोड़ करके सब जितने फल सब कुछ खा गए। इतने में वो लोग सब आए, युद्ध हुआ, अक्षय कुमार को मारा और सब बातें हुई, और भारतवर्ष में फेंक दिया सर, तो जहां जहां सब गुठली पड़ी वहाँ पर सुंदर सुंदर आम हो गए। बॉम्बे जरा निकट है ना, तो इसलिए वहाँ पर मीठे मीठे फल के गुठलियाँ पड़ी। इधर में भी उत्तर प्रदेश में भी पड़ी, बंगाल में मालदा नहीं अच्छा, मालदा बड़ा है किंतु टेस्टफुल नहीं है, दूसरे आम बड़े टेस्टफुल है ना। लेंगड़ा दशहरी ठीक है, और बड़ा जो फजली होता है इतना बड़ा बड़ा, किंतु वो फाजिल है, वो उसमें उतना सुंदर रस नहीं, किंतु उसकी एक चीज है, जब सब भारतवर्ष की फसल सब खत्म हो जाती है तब वो पकता है। त्रिजटा ने उनको बतलाया, आज मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या देखा? सारी लंका जल गई और तुम्हारे पति आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। तो बड़ी प्रसन्न सीता जी हुई। सीता का हनुमान जी के जी को चूड़ामणि प्रदान किया, और तो पहले आभूषण फेंक दिए थे और ऋषिमुख पर्वत पर पड़े, जिसको सुग्रीव ने देखा और रामचंद्र जी को उनका पता बताया कि रावण ले गया है। हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, फलों को खा जाना, राक्षसियों को भागना, सीता जी का रावण के सेवकों का हनुमान जी का संहार, हनुमान जी ने संहार किया उनके। हनुमान जी वायु नंदन को इंद्रजीत बंदी किया। ब्रह्मा का दिया हुआ एक अस्त्र था नागफांस, नागफांस मैंने क्या बाण पर चलाया गया तो सर्प आकर के उसे बांध लेंगे। हनुमान जी इस वर्ष से भी ऊपर थे, उनको कुछ नहीं कर सकता था वो बाण, किंतु ब्रह्मा जी की बात रखने के लिए और अपना काम बनाने के लिए उसको ग्रहण कर लिया, इसलिए उसको उसमें बंध गए। फिर लंका का उन्होंने दाह किया और ऐसा दाह किया लट लट करके लंका जला। रावण को सभी जितनी वहां की स्त्रियां थी सभी गाली गलौज करने लगी, सारे बड़े बड़े वीरों को उन्होंने मर्दन कर दिया, मल दिया उसने हाथ से चुटकियों में। फिर वहां से लौट आए, फिर वहां से लौट करके बंदरों के साथ में मिले। कौन बंदर? अब कहता है बंद कीजिए, समुद्र पर पुल बना, लंगलील पत्थरों को लेकर के रख देते, बड़ा विशाल पुल बन गया। उस समय में हनुमान जी हमारे गिरिराज जी को ले आ रहे थे। फिर वहां से दूत आए, जो जो पत्थर जहां है उसको रख दो, हनुमान जी ने यहां पर रख दिया। इस तरह से रात को बंदरों का लंका पर चढ़ाई किया, घेरा डालकर एक एक सेनाओं के एक एक सेनापति बनाया और चारों तरफ से लंका को घेर करके। उस समय में विभीषण को विभीषण गए भैया के पास, भैया हमारे लंके की भलाई इसी में है कि आप सीता जी को राम को लौटा दें, उनका शरण ग्रहण करें। पर सुनते ही बहुत बिगड़ गया और एक लात मारा। जब मारा तो वो जो ठीक है, जब तुमने त्यागी कर दिया तो मैं अब राम के पास में जाता हूँ। बस राम के पास में आए, आकाश में आकर के राम की दुहाई देने लगे, मैं आपका शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके निकट में आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। उन्होंने सुग्रीव जी को बुलाया, क्योंकि वे उनके मुख्य सेनापति थे, राजा थे, उनको बुलाया, उनसे पूछा कि क्या करूँ। मैंने कभी भी असुर के ऊपर में राक्षस पर विश्वास करना उचित नहीं है, उसका भाई है, कल वो फिर बदल करके उनके तरफ में मिल जाएगा, आपका जितना भीतर का संवाद है वो सब लेकर के बतला देगा, फिर आपकी हार हो जाएगी। तो फिर हनुमान जी को बुलाया, सबको बुलाया, इसके बाद में हनुमान जी को बुलाया। तो हनुमान जी से पूछा कि मुझे क्या करनी चाहिए, उसको शरण देनी चाहिए कि नहीं। हनुमान जी बोले, आप ऐसे हैं कि एक क्षण में पृथ्वी का ध्वंस कर सकते हैं और एक ही मुहूर्त में आप ऐसे ऐसे कोटि ब्रह्मांडों का सृजन कर सकते हैं, आपके लिए भय की बात क्या है, इसलिए अष्टरणागतों का आश्रय देना आपका परम कर्तव्य है। तो बड़े प्रसन्न हुए, उनकी पीठ ठोका, ठीक है। तब फिर उन्होंने सुग्रीव को बुलाया, सुग्रीव आए, सुग्रीव को उन्होंने शरण दी और अपना शरण देकर के दास नहीं बनाया, मित्र बनाया, जैसे कि वो सुग्रीव जी हैं, और दोनों को वैसा ही सम्मान देकर के सबका राजा बनाया और उसी समय उनको राज तिलक दे दिया। राज तिलक अपने नहीं दे दिए, क्यों, अभी वनवास है पिताजी का, इसलिए लक्ष्मण जी के लिए आदेश दिया, उन्होंने राज तिलक लंका के ऊपर में दे दिया, तो आज से लंकेश कहलाएगा। और तब फिर उनसे वहाँ का जितना भेद था, यहाँ तक कि वो क्यों नहीं मरता, उसके सिर्फ दस्त क्यों निकल आते हैं, सारी बातों को राम से कहा। राम मार्कंडे ऋषि, मार्कंडे न कौन, कौन अगस्त, अगस्त से सारे अस्त्रों को पहले से लेकर के आए थे, उसको मारने का भी उसे, वो तो ऐसे ही मार सकते थे, किंतु अगस्त जी से सारी बाणों की विद्या, मंत्र इत्यादि लेकर, और फिर अंत में रावण को उन्होंने मारा। रात में बांदरों का लंका से चारों घेर, विभीषण के साथ में राम की मैत्री, विभीषण का राम के को रावण का वध का उपाय बतलाना, वो ऐसे नहीं मरेगा, कैसे मरेगा, उसके हृदय में अमृत है, यदि किसी से नाभि से उसको सुखा दिया जाए तब मारेंगे तो होगा, नहीं तो अमृत के वजह से नाभि से फिर से सीर निकल आएंगे, वो मरेगा नहीं। अच्छा वो अमृत क्या था, लोग कहते हैं भक्त लोग क्या करते हैं, वो सीताजी अमृत थी, उनका हृदय में धारण करता था, सीताजी का स्मरण करता था, अपनी आराध्या देवी के रूप में पूजन करता था, क्योंकि जय विजय तो था ही, ऊपर से मालूम नहीं होने देता, इसलिए सीताजी को अपने हृदय में धारण करता था, इसलिए जब तक सीताजी को भूल नहीं जाएगा तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए अगस्त के बाणों के द्वारा रामचंद्र जी ने पहले तो कुंभकर्ण का वध किया, लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध किया, इंद्रजीत वध करने के समय में बड़ी बड़ी लीलाएं हुई, जबकि इंद्रजीत को वध करके लक्ष्मण जी ने उसके सिर को लंका में भेजा काट करके और धड़ अपने पास रखा, नहीं किया सिर ही रख लिया और धड़ को वहां पर भेजा सुलोचना के घर पर, सुलोचना देख करके सुलोचना उसकी स्त्री भेजा, वो तो विलाप करने लगी, विलाप करते हुए अपने ससुर के पास में रावण के पास में आई, ये कैसे मारे गए, उनको तो मार सकने वाला कोई नहीं था, जो कितना 12 वर्ष तक अन्न नहीं खाया हो, 12 वर्ष 14 वर्ष तक रात में सोता नहीं हो, भोजन नहीं किया हो और ब्रह्मचर्य हो, जो स्त्री के पास में कभी नहीं देखा हो, स्त्री का मुख नहीं देखा हो, ऐसा व्यक्ति इनको मारने वाला होना चाहिए, कैसे इन्होंने मारा, लक्ष्मण जी तो ऐसे नहीं है, फिर इसका पता लगाया जाए और इसके बाद में तो फिर इसके लिए कुछ उपाय किया जाए, मैं सती होना चाहती हूँ, इसे इनका सिर मंगवा दिया जाए, मैं मेरे बस की बात नहीं, ये तो तुम जाओ राम से कहो, राम बड़े दयालु हैं, तुम्हारी बात सुन करके लौटा दें, मैं नारी और भी विधवा, अभी कम किशोरी उम्र, मैं राम की सभा में जाऊंगी, राम वहां पर जितने बंदर और भालू, तो बंदर ही भालू होते हैं, वो मुझे क्या न जाने करें, बेइज्जत कर दें, मैं नहीं जाऊंगी, आप इसकी व्यवस्था करें। मैंने कहा वहां रामचंद्र जी के सेनाओं में ऐसा कोई नहीं है जो आत्मसंयमी नहीं हो, अपने मन को अपने कंट्रोल में करने वाले हैं, एक एक से ऐसे हैं जो कि एकदम समाधि लगाने वाले, एकदम ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले हैं, वहां पर उत्पात की कोई संभावना नहीं है, तुम निधड़क होकर के उनके पास में चली जाओ, वो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। उनके कहने पर किसी के साथ में वहां पर भेजा, जब वहां पर गए तो पहले प्रश्न किया, लक्ष्मण जी कैसे उनको मारे, मैं पतिव्रता नारी हूं और कोई भी इनका वध नहीं कर सकता था जो कि ब्रह्मचारी नहीं हो, 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करने वाला, अन्न नहीं खाने वाला, रात और दिन सोने वाला नहीं हो, ऐसा व्यक्ति इनका वध कर, ये तो 14 वर्ष में खाए नहीं सोया नहीं। लक्ष्मण से पूछा गया, राम ने पूछा, मैं कहा हाँ, मैंने 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाया और सोया भी नहीं, स्त्री का मैंने मुख भी दर्शन नहीं किया। प्रमाण क्या है? हमने जब खाया तुमको भी दिया, तुमने वो कहाँ रखा? खाया नहीं। मैं कहा कि उस दिन का भोजन वहां पर रखा है, अभी उस दिन का भोजन वहां पर रखा है, इष्ट मुख का भोजन यहाँ पर रखा है, जहाँ जहाँ आपने खाने के लिए दिया मैंने पेड़ के कंदरे में या पहाड़ों के कंदरे में आप उसको मंगवा लीजिए। भेजा गया और साथ ही साथ देखा गया जो सब ठीक है। हनुमान को कहा गया, हनुमान सब उनका भोजन प्रस्तुत करके ले आए। अच्छा ठीक है, सोया नहीं? नहीं मैंने सोया नहीं। मैं दिन में तो रामचंद्र जी के साथ में उनकी सेवा के लिए रहता, रात भर मैं पहरा देता था, इसलिए रात में मैंने कभी नहीं सोया। और मैं ब्रह्मचारी तो ही हूँ, आप तो जानते ही हैं लक्ष्मण जी। इस तरह से अच्छा तो फिर मारा कैसे? मैं पतिव्रता हूँ और उधर में उर्मिला जी भी पतिव्रता है, दोनों पतिव्रताओं में यहाँ पर लड़ाई है, विवाद उनमें है, हमारा पति न मरे और हमारा पति न मरे। किंतु मरा क्यों? दोनों पतिव्रताओं का, सुलोचना और उर्मिला का सतीत्व तो बराबर है और बड़ी सदाचारिणी भक्तिमती हैं, किंतु उसका पति जो दुष्ट है और रावण जो अनर्थ कर रहा है उसमें सहायता दे रहा है, मदिरा पान करता है, अस्त्रों का बेचा ये जैसा करता है आचार, इसलिए अपने कर्मों से वो मरा। मैं तो इसमें इनका दोष भी नहीं, हम पति प्रथा में आप लोग रामचंद्र जी ने अंत में जब संतुष्ट हो गई तो रामचंद्र जी ने कहा अब जो कुछ यदि कहो तो मैं उनको जीवित कर दूं, तुम ले जाओ। तो उसने कहा अब जीवित करने की जरूरत नहीं, जो आपने किया सो अच्छा किया, उनका सिर हमें दे दें। बस उसको सिर दे दिया, वो लेकर के आई और उनके साथ में हो गई। इसके बाद में कुंभकर्ण वो 6 महीना सोता था, 1 दिन जगता था, और जिस दिन जगता था जितनी भेड़ भैंस ऊंट गधे जितने मिल जाते थे मदिरा हजारों